हरे कृष्णा। संध्याकालीन सत्संग पर, जगन्नाथ कथा महामहोत्सव पर, अंतिम दिवस में आपको सबको हार्दिक स्वागत करते हैं मीरा रोड का तरफ से। तब अभी हम चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर का अंदर क्या क्या दर्शन करना चाहिए। आप लोग को जो गए हैं फिर भी आप लोग का मन को वहाँ ले लीजिएगा, नहीं गए यहीं पे बैठ के फिर भी आपका मन कहाँ ले लेना है, जगन्नाथपुरी में। जय जगन्नाथ। शास्त्र का अनुसार प्रमाण दिया जाता है, कछुआ रहता कहाँ पे, पानी में। अंडा देता है कहाँ पे, स्थल भाग पे। स्थल भाग पे अंडा देता है और रहता है पानी पे। रहने का नाते चिंतन किसका करता है, अपने को, अंडे को। चिंतन करने मात्र से उसका बच्चे होते हैं। पानी में रहता है, अंडा देता है ऊपर स्थल भाग पे, और चिंतन करता है पानी के अंदर रह के अंडे को। उसी प्रकार आप कहां भी रहो, किसी भी स्थिति पर रहो, लेकिन चिंतन किसका करना है। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का आप चिंतन करते हो उसी प्रकार भक्ति का फल आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिर भी आप मंदिर पे बैठ के जगन्नाथ का बारे में सुन रहे हो। तो वह जगन्नाथ मंदिर पे अंदर आप जाते हो तो क्या क्या दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर लगभग 30 स्पॉट है जो कि दर्शन करना चाहिए। व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, सीधा जगन्नाथ का दर्शन करके वापस चला जाता है। जगन्नाथ मंदिर का अंदर इतना है, और जगन्नाथ पुरी में और क्या क्या दर्शन करना है इसका आगे फिर चर्चा करेंगे। एक एक करके चर्चा करते हैं। मंदिर का अंदर आप जाते हो, जगन्नाथ मंदिर का प्रवेश करने का पहले अरुण खंभा को दर्शन करना है। अरुण खंभा क्या है, जो कि सूर्य का वाहन है। 33 फीट हाइट है पूरी मंदिर का सामने, और वो पहले कोणार्क में था, क्योंकि सारा विश्व में सन टेम्पल एक ही है। कहां पर, कोणार्क पे। और फिर सारा विश्व में एक ब्रह्मा जी के एक ही मंदिर है, वो मंदिर कहां पर, पुष्कर में, आजमेर। आजमेर के अंदर पुष्कर आता है और पुष्कर तीर्थ भी है, तब ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये विश्व में एक एक मंदिर है, और अलग अलग का मंदिर होता है। तब हर गांव पे, हर शहर पे अलग अलग का मंदिर है, लेकिन ये दो मंदिर एक एक ही है। तब ये अरुण स्तंभ को कोणार्क से राजा ने लेके आके जगन्नाथ मंदिर का सामने प्रतिष्ठा कर दिया। तब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करने का पहले अरुण स्तंभ को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके आगे बढ़िए। तब मंदिर के अंदर प्रवेश करने का पहले पूर्व दरवाजा से ही आप जाना है। इसी मंदिर का 4 दरवाजा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 दरवाजा का अलग अलग नाम है। 4 दरवाजा में अलग अलग कुछ ना कुछ किंवदंती है, और 4 दरवाजा में कौन किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए इसका भी रीति रिवाज है। रीति रिवाज का अनुसार ही प्रवेश करते हैं। तब पूर्व दरवाजा में सर्वसाधारण लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वह दरवाजा का नाम है धर्म दरवाजा। 4 है ना, धर्म, अर्थ, काम, मुख्य, इस प्रकार 4 दरवाजा, 4 दिशा का अनुसार 4। और उसी दरवाजा का नाम है सिंह दरवाजा। सिंह, उसी दरवाजा में आपको सिंह का दर्शन होगा। पूर्व दरवाजा, सिंह दरवाजा, और उसी दरवाजा में दरवाजा तीसरा नाम है धर्म का दरवाजा। उसी दरवाजा में सर्वसाधारण लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग जैसा सर्वसाधारण दर्शन करने के लिए जाना है। और दक्षिण दरवाजा पे आपको घोड़ा का दर्शन मिलेगा, उसको दक्षिण दरवाजा कहा जाता है, घोड़ा का दरवाजा कहा जाता है, और अर्थ का दरवाजा कहा जाता है। उसी दरवाजा में राजा आते हैं। उसी दरवाजे में सर्वसाधारण लोग नहीं आके, वहां पे सेवक लोग प्रवेश करते हैं। मंदिर पे जितना सब सेवक है सेवा करने वाले हैं सब उसी दरवाजा से प्रवेश करते हैं। पश्चिम दरवाजा, पश्चिम दरवाजा का नाम है हाथी दरवाजा और काम का दरवाजा। उसी दरवाजा से जंत्र मंत्र तंत्र करने वाले आते हैं। और चौथा नंबर दरवाजा का नाम है उत्तर दरवाजा और उसको बाघ का दरवाजा कहा जाता है, शेर का दरवाजा। और वो दरवाजा है मुख्य का दरवाजा। और वो दरवाजा से बिना कामना रहित तो व्यक्ति ही प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार लंगड़ा अंधा भिकारी इस प्रकार वो दरवाजा में जाते हैं। और वो दरवाजा शाम को 7:30 बजे का बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उसी दरवाजा का साइड में जगन्नाथ का कोयली वैकुंठपुर, मतलब जगन्नाथ का श्मशान घाट, जगन्नाथ भी समाधि लेते हैं। तो वो दरवाजा शाम को 7:30 बजे बंद हो जाता है, उत्तर दरवाजा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तब आप पूर्व दरवाजा में आप प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद पहले राइट साइड में पतित पावन आएगा। जगन्नाथ का दूसरा नाम है पतित पावन। पतित पावन किसके लिए है? क्योंकि जो लोग उसी मंदिर का अंदर प्रवेश नहीं है, जो लोग को प्रवेश नहीं, कौन सा लोग? जो चंडाल होते हैं शूद्र का नीचे, जवान मुसलमान, उनको अलाउ नहीं है। तब उन लोग कैसा दर्शन करेंगे? तब गेट का बाहर रह के पतित पावन को दर्शन करते हैं, जगन्नाथ को ही दर्शन, वही बाहर रहेंगे तो जगन्नाथ का एक ही चित्र पट है और उसको दर्शन करके वही फल प्राप्त होते हैं। तब पतित पावन को पहले प्रणाम करना है। करने का बाद फिर 22 सीढ़ी आएगा। अभी आप लोग को इतना ही मालूम पड़ जाएगा वो मंदिर कौन सा युग का मंदिर है। जो जगन्नाथ मंदिर है वो सत्य युग का मंदिर है। सत्य युग में जो मंत्र करते थे वो मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कितना अक्षर है हिसाब कीजिए, 22 अक्षर, और 22 अक्षर में 22 सीढ़ी बना हुआ। और तीसरे अर्थ में कहते हैं ये 22 सीढ़ी इसीलिए है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 22 दोष है। ये 22 दोष को खंडन करके, 22 दोष को खंडन करने के बाद आप भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं, तब ये 22 सीढ़ी को क्रॉस करते हैं, इसीलिए 22 सीढ़ी है। और 22 सीढ़ी का पहले जो सीढ़ी पहले से शुरू होता है, जो सीढ़ी का पहले एक काला पत्थर पड़ा है, वो पत्थर का नाम है यमशिला। वो शिला का ऊपर आप जरूर पैर रखना जाने का टाइम पे जरूर पैर रखना, क्योंकि जब आप पैर रखते हैं तब आपका संपूर्ण पाप वहीं के वहीं ब्रेक हो जाता है। क्यों कहा जाता है? आप मंदिर जाते तो किसके लिए? मंदिर पे आप जैसा आप आए हैं, मंदिर किसके लिए आए हैं? पुण्य कमाने के लिए। क्या करने के लिए? पुण्य कमाने के लिए। तब आप पाप घटेगा तो पुण्य कमाओगे ना, और पाप भरा रहेगा तो पुण्य कहां जाएगा? आपका पूरा बैंक बैलेंस है, पूरा भरा है बैंक है, तब और डिपॉजिट करने के लिए जगह नहीं, तब क्या करोगे? खाता फुल हो चुका है, वहां पे लिखने के लिए जगह नहीं तो कहां लिखोगे? एग्जाम्पल अब यहां पे अब मन में कुछ विचार आ रहा है, तब एक एग्जाम्पल आपको देने से आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक साधु ने एक दुकान पे गया था। साधु ने जब दुकान पे गया तब दुकान पे पूछा, बोला ये ग्रोसरी दुकान होता है, ग्रोसरी दुकान में सब कुछ पूछा। बोला ये डिब्बा में क्या है? और दुकानी बोला इसमें जीरा है। दूसरा डिब्बा में क्या है? ना राई है। ना तीसरा डिब्बा में क्या है? ना गोल मिर्ची है। चौथा डिब्बा में क्या है? ना राम है। अच्छा, साधु भी आश्चर्य हो गया, बोला डिब्बा का अंदर राम रहते है क्या? बोला नहीं नहीं, डिब्बा का अंदर राम नहीं रहते हैं, लेकिन ये सारा डिब्बा भरा है और सारा डिब्बा में कुछ ना कुछ सामान है, और जो पीछे वाला डिब्बा है ना वो खाली है, और खाली डिब्बा को हमें राम बोलते हैं। कहने का तात्पर्य को ध्यान से समझिए। बोले भरे हृदय में राम कहां बास करेंगे? कचड़ा भरा हुआ, इतने जन्म जन्मांतर का पाप हृदय में भरा हुआ, जब तक ये साफ नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब राम कहां आएंगे। और ये राम को हृदय में विराजमान करने के लिए, जगन्नाथ को विराजमान कराने के लिए, कृष्ण को विराजमान हृदय में कराने के लिए आपको पहले साफ करना पड़ेगा। कैसा साफ होगा? क्लियर है, कली युग में प्रभु का नाम का माध्यम से साफ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं, आपका वस्त्र कचड़ा है, थोड़ी से सर्फ गुला के एक ही बाल्टी के अंदर आप भिगा दिया, 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक, और कुछ करने का पड़ता नहीं। उसी प्रकार प्रभु का नाम करने मात्र से, और प्रभु का नाम वही व्यक्ति कर सकता है, भगवान भगवद गीता में प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण? जैसाम तंतुगत पापम जनना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वही व्यक्ति भजन कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान का धाम को जा सकता है, जिसका संपूर्ण पाप खत्म हो चुका है वह व्यक्ति भजन करता है, नहीं तो भजन करना इतना आसानी नहीं है। संसार में लोग के पास जाते हैं प्रवचन देने के लिए, प्रवचन लोग लाख लाख प्रवचन प्रवक्ता दे रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, कितने लोग भक्त बन रहे हैं, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। सारा जगत में आप चला जाइए, सारा विश्व का लोग का पास कितने लोग भक्ति में, 0.5% लोग भी भक्ति में नहीं जुड़े अभी तक, अभी तक भी 0.5% लोग कृष्ण को जानते नहीं। वृंदावन में एक व्यक्ति आया था बाप और बेटा का साथ, और संध्या आरती था, संध्या आरती का टाइम में हमें घूमते हैं वहां पे, ज्यादा चोरी होता है तो हमें चोर को पकड़ने के लिए, तब बहुत भीड़ होता है, यहाँ पे तो इतना ये नहीं, वहां पे हर दिन धक्का मुक्की लगा के आपको दर्शन करना पड़ता है, इतनी भीड़ होता है, हर दिन वहां पे यात्रा होता है, वृंदावन धाम में हर दिन यात्रा जैसा आपको लगेगा, इससे भीड़ होता है। तब संध्या आरती का टाइम पे बेटा पूछ रहा है कृष्ण बलराम को देखा के, बाप पिताजी को पूछ रहा है, पिताजी बताइए दोनों कौन है, खुद पिताजी को भी मालूम नहीं, मैं उसका पीछे खड़ा था, मैं सुन रहा था, खुद पिताजी को भी मालूम नहीं, और पुत्र को क्या आंसर देगा, बोला पता नहीं ये दोनों कौन है। पहले तो चैतन्य महाप्रभु के पास से खड़ा होकर देखा, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाकर खड़े है, बोले ये दोनों कौन है, बोला हो सकता है ये दोनों क्रिकेट का जो एम्पियर होते हैं ना, ये दोनों वही है, इसलिए हाथ उठाते ना एम्पियर, जब छक्का सिक्स हो जाता है क्या करते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं, वही है। बाप बेटा को ऐसा समझा रहा है, भगवान पहचान नहीं पाएंगे, जब तक भगवान का बारे में नहीं समझेगा, भागवत नहीं पढ़ेगा, भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, जब तक साधु का मुख से नहीं सुनेगा, तब तक क्या समझेगा, भगवान का दरबार पे आके फिर भी प्रणाम भी नहीं करेगा, ऐसा आएगा घूम फिर के राउंड लगा के बस निकल जाएगा, क्या कल्याण होगा। तब वो व्यक्ति मेरा पीछे जब खड़ा था, मैं उनको फिर बताया, मैं बोला ये है कृष्ण बलराम, आपको मालूम नहीं कृष्ण हमेशा हाथ में क्या बजाते, कम से कम आपका बेटा को टीवी दिखाने में शौक है, टीवी दिखाते रहते हो, फिल्म स्टार के बारे में बताते हो, लेकिन भगवान के बारे में नहीं समझते, भारत में फिर जन्म लिए, और भगवान ऐसा जगह फिर भेज देंगे, मंदिर आके भगवान को नहीं समझ पाया, भगवान यहाँ पे और ये धरती पे आपको जन्म देंगे, और जो मर्त्य महिमंडल जो है, भारत भूमि है, इतना पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है, स्वयं प्रभु आए, ये धरती इतना पवित्र है, और फिर भी हमें धरती में आए हैं भगवान को समझने के लिए, भगवान ये मनुष्य तरह दिए, पहले भगवान को समझना है, भगवान को समझने के बाद खुद को समझना है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ रिलेशन क्या है। तो इसी प्रकार हमें भजन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, भगवान वहीं पे हृदय में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तब ये 22 सीढ़ी 22 दोष खंडन होने का नाते आप 22 सीढ़ी को क्रॉस करते हैं, तब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, तब पहले 22 सीढ़ी क्रॉस होने के बाद बाईं तरफ को मोड़ने का, दाईं तरफ नहीं जाना, बाईं तरफ मंदिर का अंदर बाईं तरफ जाने का, बाईं तरफ जाते हो तब पहले आएगा पंडित लोग आपको बुलाएंगे मंदिर के अंदर, आइए भोग लगाना फिर दक्षिणा देना जो भी है, लेकिन इसमें आप लोग को नहीं फंसना। पंडित लोग को कुछ भी बोले लेकिन आपको भोग लगाना है, इच्छा है फिर भोग लगाना, नहीं है तब आनंद बाजार से महाप्रसाद, वो भोग लगा हुआ प्रसाद वहां से खरीद करके आप अपना शहर को लेकर आना है। तब वहां पे जाते हो तो पहले आएगा कल्पवट, बटवृक्ष है, बहुत विराट बटवृक्ष है। उसी बटवृक्ष का ऊपर काक भूषुंडी बैठ के भगवान राम का नाम ले रहा था, भगवान राम का नाम ले रहा था, और वही काक भूषुंडी बताया इंद्रद्युम्न राजा ने यह मंदिर को बनवाया, वो साक्षी दिया, विटनेस। तब ये कल्पवट में आप जाके मथा टेकना, मथा टेक के कोई भी वहां पे ढागा बेचते हैं, ये ढागा को अपना मन कामना के लिए, कुछ भी आपका मन का कामना है और उसमें वो ढागा को बांध देना, एक साल का अंदर आपका कामना पूर्ण हो जाता है। और आपका ये जो 22 सीढ़ी है, मैं थोड़ा बैक जा रहा हूं, 22 सीढ़ी का अंदर आप लोग का अपना पितृश्राद्ध में अभी चल रहा है ना, पितृश्राद्ध में वहां पे भीड़ होता है, पितृश्राद्ध में वो 22 सीढ़ी का ऊपर पंडे लोग बैठते हैं आपका पितृश्राद्ध देने के लिए, एक बार वहां पे आप दे देते हैं आपका पितृपुरुष के लिए कल्याण हो जाता है और जगन्नाथ का डायरेक्ट कृपा हो जाता है। और किसी का बच्चा नहीं होता है, निःसंतान है, वो मन कामना करता है 22 सीढ़ी का ऊपर बैठ के, सीढ़ी में बैठ के प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करके मेरा को संतान दे दीजिएगा, ऐसा प्रार्थना करता है। तब प्रार्थना करके फिर जब संतान हो जाता है तो संतान होने के बाद वो बच्चे को ये 22 सीढ़ी के ऊपर गड़ाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में गड़ाने का, पूरा जो भी है इस प्रकार 22 सीढ़ी, जब बच्चा हो जाते हैं संतान हो जाता है तब तो इस प्रकार यहां का रीति रिवाज है, कम दिन के अंदर निही संतान भी संतान को प्राप्त कर लेता है। तब कल्पवट दर्शन करने का बाद कल्पवट का नीचे गणपति भगवान है, ताजा ना आपका यहां पे महाराष्ट्र का ज्यादा गणपति का है, तब वहां पे है बट गणेश, उनको दर्शन करना। इसका बाद आएगा गणपति का सामने बट जगन्नाथ, पेड़ का नीचे है इसीलिए बट जगन्नाथ, सिर्फ एकला जगन्नाथ है। इसका बाद आएगा दक्षिण दरवाजा, दक्षिण दरवाजा का तरफ आप जाते हो, वहां पे की बहुत 8 फीट लगभग एक पत्थर भगवान का रत्न गृह से पत्थर गिरा हुआ, वो पत्थर दक्षिण दरवाजा का से रखा गया और वो दक्षिण दरवाजा पे जाके वो पत्थर को प्रणाम करना और पत्थर भी बात करता है, एक ही साइड में आप बोलोगे दूसरा साइड में सुन सकते हैं। अभी है इंडिया में कोई ऐसा पत्थर? ये सब कुछ जगन्नाथ का आश्चर्यजनक घटना। और वो पत्थर जब गिरा किसी व्यक्ति का ऊपर नहीं गिरा, सब लोग के दर्शन कर रहे थे, किसी का ऊपर नहीं गिरा, और कब से गिर रहा है गिरा हुआ वो पत्थर अभी भी पड़ा है। इसको कहते हैं शब्द भेदी प्रस्तर, शब्द भेदी शिला कहा जाता है। और वो पत्थर को प्रणाम करने के बाद फिर आप जाएंगे वहां पे षडभुज गौरांग, षडभुज 6 भुज वाले गौरांग वहां पे विराजमान है दक्षिण दरवाजा पे, और वहां पे आपको नरसिंह देव का दर्शन होगा, नरसिंह देव भी है। ये दर्शन करने का बाद बाएं तरफ को थोड़ा मोड़ना है, बाएं तरफ आप जाते हो क्या दर्शन मिलेगा, जगन्नाथ का रोषशाला, उसमें अभी 250 चूल्हा है और चूल्हा पे ये जान लेना चाहिए कोई गैस यूज नहीं होता है, वहां पे सब ईंधन क्या है लकड़ी का, लकड़ी का ईंधन में पकवान बनता है। और कौन सा बर्तन? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन में ही बनता है, इसलिए कहते हैं मिट्टी का बर्तन में आप बनाते हो तो वह 100% आपको टेस्ट मिलेगा, आप पीतल में बनाते हैं तो 80% टेस्ट मिलेगा, और आप स्टील में बनाते हो तो 50% टेस्ट मिलेगा, और स्टील का नीचे और कुछ आ रहा है पता नहीं, और कोई बर्तन में बनाते हो तब और भी नीचे नीचे डाउन हो गए, कोई टेस्ट नहीं मिलता है। इसलिए मिट्टी के पात्र में घर पे पकवान बनाकर आप भोजन कीजिएगा, पेट का बीमार कभी नहीं हो सकता है। ये भी आयुर्वेदिक है। और वहां पे जो चूल्हा होता है ऐसा नहीं एक का ऊपर एक ही रख के भगवान के लिए पकवान बनाते हैं, एक ही साथ में 7 पॉट्स। और मिट्टी का बर्तन होता है उसका नाम है कोड़ुआ, उड़िया भाषा में बोलते हैं कोड़ुआ। मैं लाया नहीं, जब वृंदावन में कथा होता है मेरा पास से सब सामान रहता है, उसको दिखाना पड़ता है, ये चीज वो है, ये चीज वो है, सब दिखाना पड़ता है, सब लोग को समझ पाते हैं। और मिट्टी का बर्तन में वो बनता है और 7 कोड़ुआ एक का ऊपर एक। नॉर्मल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं उदाहरण का स्वरूप, घर पे आप कुछ भी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, एक ही बर्तन में थोड़ी से तेल डाल के छुंक लगाने के टाइम पे थोड़ी से ईंधन ज्यादा हो गया तब वो तेल क्या हो जाता है, जल जाता है। तब वहां पे 7 पॉट्स एक ही साथ में, कभी भी जला हुआ प्रसाद कभी सुना, भोग जल गया, कभी नमकीन ज्यादा नमक हो गया, कभी ज्यादा मिर्ची हो गया, वो भी नहीं है जगन्नाथपुरी में। स्वयं लक्ष्मी विराजमान है और लक्ष्मी स्वयं कुकिंग करते हैं, ये भाव। फिर भी आप लोग भक्त लोग है, आपको सूचना दे देता हूं कि इस प्रकार आपको जानकारी के लिए, नीचे वाला जो पात्र होता है उसमें सिर्फ पानी रहता है, सिर्फ पानी, और उसका माप से और सब पकता है। ऊपर वाला पहले पकेगा, इसका बाद नीचे, उसका नीचे, उसका नीचे, उसका नीचे, लास्ट में नीचे वाला। अब देखिए क्या आश्चर्यजनक का ये घटना है, ये सब कुछ भगवान का लीला है। 8 चीज मंदिर में आश्चर्यजनक है, बाद में बताऊंगा क्या क्या है 8 चीज आश्चर्यजनक घटना जगन्नाथपुरी में। तब दक्षिण दरवाजा पे चूल्हा पे जाके आप दर्शन करना है रोशोशाला को, रोशोशाला को दर्शन करने का बाद है फिर आप थोड़ी से मंदिर का अंदर आते हैं। मंदिर का अंदर आके दर्शन क्या होगा, मुक्ति मंडप। मंदिर का अंदर है 5 मंडप, मुक्ति मंडप, स्नान मंडप, रत्न मंडप, नाट मंडप, भोग मंडप, 5 मंडप है जगन्नाथ मंदिर का अंदर। लेकिन 3 मंडप एक ही लाइन पे, 3 मंडप एक ही लाइन में, रत्न मंडप, नाट मंडप और भोग मंडप। नाट मंडप किसको कहते हैं, जहां पे खड़ा होके हम दर्शन करते हैं इसको कहते हैं नाट मंडप। हम जहां बैठे हैं अभी, भगवान जिसमें विराजमान है इसको रत्न मंडप कहा जाता है। और इसका पीछे, नाट मंडप का पीछे भोग मंडप है। रत्न मंडप से भोग मंडप का अंदर लगभग 30 मीटर डिस्टेंस में भगवान को भोग लगाया जाता है। कभी कभी भगवान को जो गोल्ड का प्लेट है, जगन्नाथ को सोने का पात्र में खिलाते हैं, और वो लगता है शाम को 4:30 बजे। वो भाग्य में आपका होगा तो मिलेगा, आपका भाग्य है, भाग्य खोला है आपका, तब आपको वो प्रसाद मिलेगा, सोना पात्र का महाप्रसाद। तब वो रत्न गर्भ में भगवान को भोग लगा जाता है सोना थाली का। लेकिन भोग लगाने का तरीका भी है, जब पुजारी भोग मंडप का सामने खड़ा होगा, चड़ू लेगा हाथ में, चड़ू समझ रहे हैं, हम लोग बोलते हैं आचमन, वो चड़ू लेगा, चड़ू मतलब पानी को हाथ में लेगा, और इसमें तुलसी का दल डालेगा, तुलसी दल डाल के देखेगा, पहले देखेगा उसमें स्वयं जगन्नाथ है कि नहीं है, इसमें चित्रपट दिखाई देगा जगन्नाथ का, जब तक जगन्नाथ इसमें दर्शन नहीं दे रहे हैं तब मंदिर के अंदर कुछ अघटना हुआ है, नहीं तो मंदिर के अंदर कुछ अशुद्धि हुआ है, तो पंडा को ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो जगन्नाथ तो अभी कहां चले गए, भोजन नहीं कर रहे हैं। तब फिर चलू लेके देखेगा, तब देखने का बाद फिर सरा जितना भोग लगा हुआ सबका ऊपर जल का छिटका लगाएगा, इस प्रकार की जगन्नाथ को भोग लगता है। अभी आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे ये चीज को सुनते हुए, आश्चर्य भगवान को चलू में देखेगा कितने प्रकार की शुद्धता होगा उस चीज की, चलू के भगवान को दर्शन करता है, ये रीति रिवाज है। तब मुक्ति मंडप पे 108 पंडित बैठते हैं, वहां पे पंडित लोग से आशीर्वाद लेना है और जरूर कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाना है, इतने इतने दूर से आप जाते हैं है कि नहीं, तब पंडित लोग को देने से कंजूस क्यों होना है। मंदिर पे जाते हो जैसा इधर आप आते हो तो पहले आपका जेब में आपका गला पे कान में जो भी कुछ होता है यहां समर्पित कर देना चाहिए, तब भगवान समझेगा हाँ ये मेरा प्रिय भक्त है कम से कम। लेकिन पहले हमें शरीर को सजाने के लिए क्या नहीं क्या लगाते हैं, पहले जेब भरने के लिए चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास समर्पित कर देना चाहिए। कहने का अर्थ है जहां भी तीर्थ में जाते हो तीर्थ में साधु संत लोग को दान देना चाहिए, साधु संत लोग को दान नहीं देते हो तो मंदिर पे दान देना जरूर चाहिए, और कभी भी कंजूस मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे बड़ा रिच पर्सन भारत में पहले था, पहले का घटना ये, अभी का नहीं, अभी का टाइम पे तो आपका बॉम्बे में है रिच पर्सन, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन जो भी है, लेकिन सबसे बड़ा रिच पर्सन वृंदावन में आया था और प्रिय मंदिर सारा विश्व का जो कि मेन मंदिर होता है नाम है बांको बिहारी, वो मंदिर पे गया और भगवान का आरती भी चल रहा था, आरती के बाद भी दिया जला दिखाते हैं ना सबको भगवान का आरती लेने के लिए, तब उन्होंने क्या किया, जिंदगी में कभी भी कहां भी दान नहीं दिया, ऐसे व्यक्ति भी भारत में होते हैं। तब उन्होंने क्या किया, एक रुपया कॉइन का, अभी एक रुपया कोई भिखारी भी नहीं देता है, एक रुपया कॉइन से निकाला, जेब से निकल के हाथ में पकड़ कर क्या किया, और हाथ में पकड़ा है, फिर देख रहा है दूं कि नहीं दूं। सुबह कम से कम एक घंटा हो गया, दूं कि नहीं दूं, ऐसा दबाकर फिर रख रहा है, दबाकर रखा था, हाथ का अंदर से पसीना आ गया। तो ये सोच रहा है अरे क्यों रो रहा है, फिर देखते हुए बोला, पूछा उसको, क्यों रो रहा है, मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी, मैं फिर अपना जेब में डाल दिया। ये कंजूस मेंटालिटी, और वो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है, कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, इसी मेंटालिटी भी कभी नहीं होना चाहिए। भगवान दिए है आपको दे देना है, क्योंकि आपका संपत्ति संसार का कुछ नहीं है, है हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान का संपत्ति भगवान को दे दो, नहीं तो हम भगवान भगवद गीता में बताई दिए 3:12 श्लोक को पढ़िए, सब लोग आज जाके पढ़िए अनुवाद में प्रभुपाद क्या लिखे है, अनुवाद में लिखा है गीता का 3:12 श्लोक याद रखिए, 13 श्लोक में भगवान को भोग लगा के भोजन करने के लिए लिखा गया 13 श्लोक, लेकिन 12 श्लोक में लिखा गया सारा संसार का लोक चोर है, ये लिखा गया, नीचे लिखा है चोर का शब्द लिखा है ऑलरेडी। क्यों भगवान ने इतने बड़े बात किया, आप खुद को पूछिए, भगवान ने इतने बड़े बात क्यों किया, क्योंकि भगवान का सारा संपत्ति है और भगवान का संपत्ति को हम इस्तेमाल कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा संपत्ति है कुछ, आने का पहले मां का स्तन में दूध दे दिए, एक बात, दूसरा है भगवान ने सूर्य रोशनी का दिया, इसका रोशनी किसका है, आपका पिताजी का, आपका दादाजी आपके लिए पैसा भर दिया गया, घर पे आप बिजली इस्तेमाल करते हो, सही है ना, घर पे बिजली इस्तेमाल करते हो, महीना का एंड होते हुए फिर आपको बिल भरना पड़ता है, एक दिन लेट हो गया तो क्या, अंधेरा में जीवन बिताना पड़ता है। भगवान ने एक लाइट लगाया सारा संसार का लोक के लिए, सारा संसार का लोक ले रहे है, और ये बल्ब कभी फ्यूज नहीं होता है, कभी फ्यूज हुआ सुना, कभी बल्ब फ्यूज हो गया, वो बल्ब फ्यूज नहीं होता है, कौन सा लाइट है बोलिए, सनलाइट, सूर्य का रोशनी, ले रहे नहीं ले रहे, इंद्रदेव इतना बारिश दे रहा है, किसका संपत्ति है? पवन देव इतना हवा देते हैं तो किसका संपत्ति है? इसलिए भगवान भगवद्गीता में यह डिटेल से बताया। भगवद्गीता का 3 अध्याय 12 नंबर श्लोक को पढ़ के देखिए, तब इसलिए कहते हैं कम से कम भगवान का संपत्ति भगवान को दे देने का। जब भी आते हो मंदिर से, मंदिर पे जब भी आते हो, मन विचार लेकर आते हो, कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, और नहीं तो कुछ ना कुछ माला चढ़ाने के लिए लेकर आना चाहिए, कुछ भेंट चढ़ाएं, प्रभु किसमें प्रसन्न होंगे। इसलिए वृंदावन आप जाएंगे, हर व्यक्ति माला लेकर आता है, और हमें माला भगवान को चढ़ाते चढ़ाते हम भी थक जाते हैं, और माला बांटने के लिए भी परेशानी हो जाते हैं, इतने माला आता है। और वहां पे भगवान तो पूरा माला ही माला पहनते हैं। तब इसका बाद है, आप मुक्ति मंडप के दर्शन करने का बाद मुक्ति मंडप का सामने है आदि नृसिंहदेव, इसका बाद दर्शन करोगे रोहिणी कुंड, जिसी कुंड का जल को पंडित लोग को छिटका लगाते हैं। प्रमाण दिया था रोहिणी कुंड पे एक ही कुआं गिरा, गिरने का नाते वो चतुर्भुज बन के कहां पहुंच गया, बैकुंड चला गया था, वही रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड का जल को छिटका लगाते हैं, कम से कम एक बूंद हमारा गिर जाए तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तब तो उसका सामने आप जाते हैं, तब तो सामने देखेंगे कि कुआं, जिसी कुआं से जल आके भगवान को स्नान किया जाता है, हर दिन भगवान को स्नान किया जाता है। लेकिन भगवान का अर्चा विग्रह को, जगन्नाथ का अर्चा विग्रह का नाम है राधा मदन मोहन, ध्यान रखिए, श्री श्री राधा मदन मोहन की। फिर भी हमारे बीच में प्रभु जी आए हैं, हमें एक बार जय जगन्नाथ बोल के हार्दिक स्वागत करते हैं कमलोचन प्रभु को, जय जगन्नाथ। थोड़ा ऐसा आवाज लगा है, 5 दिन हो गया, थका तो नहीं है, हर दिन भी कथा सुनने मिल रहा है, प्रसाद भी मिल रहा है, थोड़ा ऐसा आवाज लगाइए, जय जगन्नाथ, क्योंकि आवाज स्वयं जगन्नाथ का धाम को पहुंच जाता है हृदय और भाव और श्रद्धा का साथ बोलना चाहिए। तब रोहिणी कुंड का सामने है एक कुआं है, जिसी कुआं से जल जाके भगवान को स्नान किया जाता है, हर दिन स्नान किया जाता है राधा मदन मोहन को, जो अर्चा विग्रह है। जगन्नाथ तो बाहर आते हैं तो रथ यात्रा का टाइम पे बाहर आता है रथ का ऊपर, लेकिन ये राधा मदन मोहन जब भी चंदन यात्रा होता है, अलग अलग पर्व प्रणी होता है, ये अर्चा विग्रह को लिया जाता है। जिसी प्रकार चंदन यात्रा 21 दिन तक चंदन यात्रा होता है पुरी में, नौका विहार 21 दिन नौका विहार होता है, पुरी का अंदर क्या क्या दर्शन करना है वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको इतना ही बता रहा हूं, जो कि स्वयं राधा मदन मोहन अर्चा विग्रह है जगन्नाथ का। इसका बाद है वो वहां जो कुआं है, मंदिर का अंदर 3 कुआं है, एक ही है गंगा, एक ही है यमुना, एक ही है सरस्वती, लेकिन नाम दिया गया, लेकिन सरस्वती कुआं कभी खुलता नहीं, साल में एक बार खोला जाता है, उसको स्वर्णकूप कहा जाता है, सरस्वती कुआं नहीं तो स्वर्णकूप, वो कुआं एक दिन खुलता है जिस दिन स्नान किया जाता है जगन्नाथ को, स्नान पूर्णिमा का दिन किया जाता है उसी दिन, और उसी दिन उसी कुआं से, सरस्वती कुआं जो है उसी कुआं से 108 गगरे का पानी निकला जाता है, और निकल के अलग अलग जगन्नाथ के लिए 35 गगरा में स्नान किया जाता है, बलदेव को 33 गगरा में स्नान किया जाता है, सुभद्रा को 22 गगरा में स्नान किया जाता है, सुदर्शन के लिए कितना है आप हिसाब कीजिए बताइए, 18 कितना हुआ, 40, 35 और 33 कितना हुआ, 68 + 40 = 108, 108 गगरा में स्नान किया जाता है इस प्रकार। तब फिर भी आपका मन में प्रश्न भी आ सकता है, साल भर के बंद रहने का बाद कुआं का अंदर कीड़ा नहीं होते, कभी नहीं, पानी हमेशा के लिए ताजा ही, ये भगवान का क्या लीला है। और कभी भी उसी मंदिर के अंदर जितने कुआं है, 3 कुआं 3 कुआं का अंदर कभी ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं होता है, और समुद्र सिर्फ मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन कुआं इतना गहरा है लेकिन फिर भी पानी नमकीन नहीं है, हमेशा मीठा है। नारियल पानी पियोगे और वो पानी पिएगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा है। तब आप वो दर्शन करने का बाद फिर सामना में है बिमला मंदिर। बिमला मंदिर पे जगन्नाथ को भगवान को भोग लगने का बाद बिमला का पास भोग लगता है। बिमला को जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक उसका नाम महाप्रसाद नहीं कहा जाएगा। और महाप्रसाद क्यों कहा गया फिर आपको समय मिलेगा तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं महाप्रसाद के बारे में वृंदावन में चर्चा किया था, 5 दिन लिया था महाप्रसाद का डेफिनेशन के बारे में। महाप्रसाद कितना अक्षर है? 5 अक्षर। इसके लिए 5 दिन चाहिए कथा के लिए। जय जगन्नाथ बोल के बोलिए, आप लोग को सुनना चाहते तो बीच बीच में जय जगन्नाथ बोलोगे तो जगन्नाथ बोलेंगे हाँ ये लोग का उत्साही है। तब बिमला मंदिर को दर्शन करके इसके बाद थोड़े आगे आप बढ़ते हैं मंदिर का कैंपस का अंदर, साक्षी गोपाल का दर्शन होगा। इसका बाद है कांची गणेश, जो गणेश को कांची से राजा युद्ध करके उनको लेकर आया था इस कांची को, और वहां पे मंदिर के अंदर उनको प्रतिष्ठा किया गया है। ये तो अलग स्टोरी है, इसको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये भक्तमाला में आता है, भक्त चरित्र में, जगन्नाथ भक्त चरित्र में आता है कांची अभियान। तब कांची गणेश को दर्शन करने का बाद है आप पश्चिम दरवाजा को जाने का, जो हाथी दरवाजा है। तब वो दरवाजा का थोड़ी से बैक करके दरवाजा का तरफ से आप मुख मुड़कर जाओगे नहीं, थोड़ा उल्टे जाने का, आप जगन्नाथ मंदिर का तरफ से देखते हो तब वहां पे विराट नरसिंहदेव का दर्शन होगा, बहुत बड़ा नरसिंहदेव, और वहां पे प्रणाम करना जरूर और वहां पे भक्ति को जांचना करना। और पश्चिम दरवाजा का तरफ आप जाते हो वहां पे जगन्नाथ का म्यूजियम है जिसको कहते हैं नीलाद्रि बिहारी म्यूजियम, और वो साइड में जगन्नाथ के लिए माला बनता है। आप लोग माला बनाते हैं तो ढागा में बनाते हैं, और यहाँ का इधर इधर का फूल लेके और विदेशी फूल लेके कुछ ना कुछ हमें यूज कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे सब कुछ नेचुरल, जिसी फूल में खुशबू नहीं है भगवान के पास ये नहीं होगा। और वहाँ पे केला का जो पेड़ है, केला का पेड़ का जो ढागा, आपको समझ में आ रहा है, केला का पेड़ का जो ढागा होता है उसी ढागा में माला बनता है। जगन्नाथपुरी में जाके देखिए माला कैसा बनता है, भगवान कैसा श्रृंगार होते हैं, भगवान का संपूर्ण ड्रेस के लिए अलग। आप लोग को ड्रेस देंगे तो आपसे कोई नहीं लेगा, पंडे लोग लेंगे नहीं, भगवान जो ड्रेस पहनते हैं सीधा डायरेक्ट साड़ी आता है, साड़ी को पहनाते हैं, कोई कटिंग नहीं, कोई ढागा सिलाई नहीं होगा, सिलाई वाला भी नहीं है, कोई डिजाइन नहीं। हम लोग जैसे हम मंदिर पे हमारा शिल प्रभुपाद ने बनाया है लेकिन हम लोग को शिक्षा देने के लिए तो हम लोग ये करते हैं, लेकिन पूरी मंदिर का जो रीति रिवाज नहीं है। हर जितने सब धाम है, जैसा तिरुपति है वहाँ का अलग रिवाज है, बद्रीनाथ में अलग है, द्वारिका में अलग है, सब अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ नियम से है, उसी नियम का अनुसार वो चलते है। तब पश्चिम दरवाजा में दर्शन करके फिर आप आगे बढ़ते हो, खीर चोरा गोपीनाथ का दर्शन होगा, भगवान ने भक्त के लिए खीर का चोरी किया था। जगन्नाथ पुरी के अंदर ये सब दर्शन हो जाता है, आपको उड़ीसा के अंदर अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए पुरी के अंदर सब है मंदिर के अंदर। खीर चोरा गोपीनाथ, माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान स्वयं खीर चोरी किया, और ये जो खीर चोरा गोपीनाथ है स्वयं भगवान राम ने ये विग्रह बनाया था। ये हिस्ट्री में अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं अभी इसको प्रस्तुत नहीं किया, खीर चोरा गोपीनाथ का बारे में ये बहुत बड़ा कहानी है, और भगवान स्वयं हाथ से प्रकट विग्रह है खीर चोरा गोपीनाथ। कार्तिक का बाद है जगन्नाथ वृंदावन में ये कथा होने वाले है, खीर चोरा गोपीनाथ, आलारनाथ और साखी गोपाल, 3 दिन का रहेगा। तब इसका खीर चोरा गोपीनाथ का बाद है नील माधव का दर्शन होगा, इसका बाद आएगा लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर पे आप जाते हो तब लक्ष्मी मंदिर में जरूर 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट बैठने का रिवाज है। आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि नारायण का पत्नी कौन है, लक्ष्मी जी, और हम उनका क्या है, संतान है। संतान होने का नाते माँ का गोद में बैठने के लिए कितना आनंद मिलता है, ये रिवाज है माँ का गोद में कम से कम 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। गर्मी के टाइम पे आप जाते हो तब वहां बैठोगे इतना शांति मिलेगा क्योंकि वहां से हवा समुद्र का हवा इतना बहता है, आनंद ही आनंद। और माला ले लोगे तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे 64 माला जब तक नहीं करूंगा नहीं जाऊंगा। इसे से भक्त भी पूरी में है जो कि वहां जाकर बैठ जाते हैं और माला करते रहते हैं, रात भी बीती जाए क्योंकि रात 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है तो ऑटोमेटिक 64 माला हो जाता है। और आपको बाई चांस और भूखा नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगा, और भूख लगेगा तो जगन्नाथ स्वयं आपका पास भेज देंगे। ऐसे ऐसे लोग है, मैं अपना खुद रियलाइजेशन बता रहा हूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन एक ही जगह में बैठ के माला कर रहा था तब एक ही व्यक्ति आया, बोला प्रभु जी आपके लिए निमंत्रण है। बोला क्या? बोला आप आइए ना, उत्तर दरवाजा का साइड में लिए और वहां पे भंडार चल रहा है। शाम को 7 बजे से 2 घंटा के लिए वो भंडारा चलता है, कोई भी व्यक्ति आ जाए उनको खिलाते हैं फ्री ऑफ चार्जेस, पेट भर के। तब लक्ष्मी मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करके ऐसा नहीं कि लक्ष्मी कभी नहीं मांगना, लक्ष्मी तो सबके पास है ऑलरेडी, लक्ष्मी मांगना नहीं वहां पे, वही प्रणाम करके वहां से फिर बैठ के फिर आप आगे बढ़ते हो। तब उत्तर दरवाजा आता है, उत्तर दरवाजे का पहले एक ही जगह पे खड़ा होके स्वयं सुदर्शन चक्र को दर्शन किया जाता है। सुदर्शन चक्र को दर्शन करने के लिए एक स्थान है, वहां पे जाके दर्शन करो। दर्शन करने का बाद बाद वो चक्र का ऊपर एक झंडा है जो झंडा का नाम है पतित पावन झंडा, और वो झंडा प्रत्येक दिन लगता है, डेली शाम को संध्या आरती का बाद 6 से 7 बजे का अंदर झंडा लगेगा। और झंडा लगाने वाले जो व्यक्ति है वो उल्टा चढ़ेगा मंदिर का ऊपर, मैं जैसा बैठा हूं ऐसा ही चढ़ेगा ऊपर, और मंदिर का हाइट है 214 फीट, उसका अंदर ऊपर चढ़ेगा। कोई सीढ़ी नहीं है, कोई झंझीर नहीं है जिसको पकड़ के आप चढ़ जाए, देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तब उसे उल्टा चढ़ के झंडा लगाता है और वहां पे खड़ा होकर दर्शन करते हो, आपका कल्याण होता है। और प्रभु को वहीं पे बैठ खड़ा होकर दर्शन करते हो, जगन्नाथ तो स्वयं आपका दिल में आ जाते हैं। जय जगन्नाथ। तब इसका बाद थोड़ी आप आगे जाते हैं तो उत्तर दरवाजा आता है। उत्तर दरवाजा में बाईं तरफ मुड़ते हो तो वो कोयली वैकुंड पर, जहां पे भगवान नवकलेवर होते हैं, नवकलेवर का होने का नाते अपना पुराना शरीर को वहां पे समाधि दिया जाता है। मिट्टी को खुदाई करके अपना संपूर्ण सब कुछ, अपना अंग वस्त्र से लेकर सारा वस्त्र वस्त्र सब लेके वहां पे समाधि दिया जाता है, क्योंकि भगवान का शरीर में सप्त आवरण लेपन होता है। सप्त आवरण का एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ये जो चीज है भगवान जगन्नाथ का नवकलेवर का एक वस्त्र है, ये उसको कहते हैं अंग वस्त्र। ये अंग वस्त्र हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन कोई पंडा के साथ हमारा रिलेशन था तब मैं उनको बताकर लेकर आया आप लोग को थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए। ये अंग वस्त्र है। और दूसरा होता है भगवान स्वयं ये ड्रेस पहनते हैं, जगन्नाथ को जो ड्रेस पहनते हैं, और ड्रेस में स्वयं क्या लिखा जाता है, गीत गोविंद। सबको दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा दिखाई दे रहा है, ये उड़िया भाषा में लिखा है गीत गोविंद। गीत गोविंद लिख के लिखा होता है, और ये ड्रेस एक ही जगह पे बनता है, और ये ड्रेस है भगवान स्वयं पहनते हैं। तीसरा है भगवान का जो अंग से निकला हुआ चीज है, 19 साल का पहले ये लगाए थे, 19 साल का पहले जगन्नाथ का नवकलेवर हुआ था 1996 में। अभी हुआ नवकलेवर कब, 2015, 19 साल का बाद नवकलेवर कब होते हैं, जब दो आषाढ़ आता है, जब दो आषाढ़ होता है भगवान जगन्नाथ अपना शरीर को छोड़ते हैं। ये भगवान मानवीय लीला करने के लिए आते हैं। नवकलेवर का बारे में आपको भी अभी नहीं बता सकता हूँ, नवकलेवर का बारे में कम से कम 15 दिन चाहिए आपको सुनने के लिए, और दर्शन करने के लिए पुरी में आपको 3 महीना रहना पड़ेगा। और नवकलेवर का मैं एक ही चीज आपको पास लाया हूँ, जो कि उसे नवकलेवर को दिखाने के लिए एक सीढ़ी, इस साल 2015 का हुआ था, अभी आप लोग को उसको दिखाएंगे, आज नहीं कल, प्रभु जी बाद में बताएंगे कौन सा जगह पे आप लोग को दर्शन देंगे। और ये जो मिट्टी है, ये जो लेपन है, ये भी आप लोग को सबको मिलेगा, जब कथा खत्म होगा तब इसको लेके आप लोग कुछ ना कुछ ताबीज बना के गला पे धारण करते हो, जगन्नाथ आपका हृदय में विराजमान होते हैं। इसके बाद आप कोयली वैकुंठ में जाते हो तो वहां पे थोड़ा टुकन लगता है, 10 रुपया का टुकन अभी कर दिया गवर्नमेंट का हिसाब से, तब वहां पे दे के दर्शन करते हो प्रणाम करके। फिर वहां पे बहुत अच्छा गार्डन बना गया, श्री श्री गौर निताय राधा गिरिधारी ललिता विशाखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की। तब कोयली वैकुंड से फिर आप आगे बढ़ते हो तब आनंद बाजार आएगा। आनंद बाजार में क्या होता है? आनंद बाजार है, बाजार का नाम है आनंद। आप सोचो बाजार का नाम है आनंद, कोई ऐसा जगह है बाजार का नाम आनंद देता है? बाजार का नाम है आनंद, आनंद ही मिलता है। वहां पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसका खुशबू से आपका पेट भर जाएगा, महाप्रसाद बेचा जाता है बाजार का नाम। और उसी बाजार पे कभी डाइनिंग टेबल नहीं ढूंढना, कोई डाइनिंग टेबल नहीं नीचे बैठ कर भोजन करने का। नीचे बैठ कर भोजन करते हो आपका शरीर पुष्ट होता है। और वहां पे कभी चम्मच नहीं ढूंढने का, भगवान ने स्वयं 5 चम्मच दिया है, ये 5 चम्मच को आप इस्तेमाल करो। ये 5 महाभूत में बना हुआ, ये 5 महाभूत शरीर है और 5 महाभूत में बना हुआ है। और जब आप प्रसाद भोजन करते हैं हाथ में और शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, इसलिए वो आनंद बाजार में जाके महाप्रसाद सेवन करने का। और महाप्रसाद सेवन करने के बाद एक ही पानी पीना जरूर, कभी आप लोग को कभी जिंदगी में भी ऐसा पानी नहीं मिलेगा, कोई भी जगह पे ऐसा टेस्ट भी बना नहीं सकता है कोई भी, उसी पूरी शहर का अंदर भी नहीं बनता है। और वो पानी का नाम है टंक तोरानी, याद रखिए। वृंदावन में जब कथा होता है तो सारा भक्त लोग को नोट करना चाहते हैं, बोला क्या क्या बोला, ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नोट करेगा तो फिर पूरी में जाकर ढूंढते रहोगे, हाँ मिल जाएगा। फिर वो पानी का नाम है टंक तोरानी, और वो पानी पीते हो पेट में कभी भी किसी भी प्रकार की बीमार नहीं होगा। और वो पानी इतने टेस्ट है, वो पानी सिर्फ भी चावल का पानी है, चावल का पानी है। हम अभी बोल रहे हैं तो हमारा मन वहीं जा रहा है अभी। तब वो पानी पीने के बाद फिर आप आनंद बाजार घूम के फिर मंदिर के अंदर आप प्रवेश कीजिए। मंदिर के अंदर आप जाते हो तब गरुड़ खंबा, गरुड़ जी जहां पे विराजमान है, पहले गरुड़ जी को आलिंगन करना है और गरुड़ जी के प्रणाम करना है। और गरुड़ जी का पीछे क्या है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर दर्शन किए थे। चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन किए थे, चैतन्य महाप्रभु का दाएं हाथ का 3 अंगुली का निशान है। वो जो पत्थर था, वो पत्थर में चैतन्य महाप्रभु जब हाथ लगाया तो वो भाव से वो पत्थर भी पिघल गया। 3 अंगुली का निशान आपको दर्शन मिलेगा। और वहीं से खड़ा होकर जगन्नाथ को एक आंखें आपको दर्शन होगा, जगन्नाथ का 2 आंखें है ना, एक आंखें दर्शन होगा। फिर दूसरा साइड में जाते हो फिर दूसरा आंख दर्शन होगा, इसी प्रकार के। तब वहां रह के दर्शन करना। और आप लोग को थोड़ा दर्शन ठीक से नहीं होता है फिर भी आप आगे जाके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिवाज का अनुसार, शास्त्र का अनुसार चैतन्य महाप्रभु वहां पे खड़ा होकर दर्शन किए थे तब हम दर्शन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसी टाइम में कितने हाइट के होंगे तब, इसलिए उनको दर्शन सही से होता था, कोई चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम थोड़े से दर्शन करने के लिए थोड़े आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाके कभी भी गर्भगृह का अंदर कभी नहीं जाना है जिसमें 1 करोड़ 250 ग्राम का ऊपर जगन्नाथ स्वयं विराजमान है। हमारा इतने हम शुद्धिकरण नहीं है कि शुद्धि हो नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका ऊपर हमारा अधिकार नहीं है चलने के लिए। और वहां पे जो पंडे लोग है, क्योंकि उनका भगवान का सेवक है, उनको सेवा दिया गया है ऑलरेडी, वो परम कब से उनका रीति रिवाज नहीं है, वो भगवान के साथ क्या संबंध है वो सेवा कर रहा है। और पंडे लोग का कभी भी गलती पूरी में देखना नहीं, कोई अपराध नहीं करके नहीं वापस आना। कुछ भी पंडे लोग को कुछ भी बोलते हैं आप समझ जाना चाहिए ये जगन्नाथ का संस्कृति है और जगन्नाथ कुछ ना कुछ हमको बोल रहा है, ये मन में लेने का। हो सकता है उड़िया में कुछ गाली देते हैं तब ये नहीं समझना चाहिए कि मन में कभी विकार नहीं लेना चाहिए, कभी मन में दुख नहीं करना है वहां पे जाके। तब फिर आप भगवान को दर्शन करके फिर सीधा वापस आते हो मंदिर का बाहर। तो मंदिर का बाहर आने का टाइम पे आपको बताया था जो काला पत्थर है वो काला पत्थर का ऊपर 22 सीढ़ी क्रॉस करने के बाद काला पत्थर आएगा, काला का पत्थर का ऊपर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप पुण्य करके आए वापस, पुण्य करके आए तब वहाँ पे पैर नहीं रखना, फिर आप जाके अपना जहाँ पे रहने का स्थान है फिर जाने का। ये है पूरी मंदिर का दर्शन। जय जगन्नाथ। अभी हम चर्चा करते हैं फिर आप लोग को जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए जाते हो। तब तो जगन्नाथपुरी में जाने का पहले और कुछ जगह है जो कि उड़ीसा में दर्शन करने का स्थान है, वो स्थान का बारे में थोड़ा बता देते हैं क्या क्या जाना दर्शन करना चाहिए। आप बाई चांस आप यहाँ से ट्रेन में जाते हो, डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से पूरी है, बाई चांस आप फ्लाइट में जाते हो तो वह फ्लाइट भुवनेश्वर तक जाता है, तो वह भुवनेश्वर में आप उतरा तो भुवनेश्वर में उतर के जरूर लिंगराज मंदिर दर्शन करना, स्वयं शिवजी वैष्णव नाम जथा शंभु, और स्वयं शिवजी को जगन्नाथ द्वारपाल बना के रखे हैं। लिंगराज का बारे में तो बताऊंगा नहीं लेकिन फिर भी आपको इतना ही बता रहा हूँ, लिंगराज को जरूर दर्शन करना। लिंगराज का दर्शन करने का बाद अनंत वासुदेव जो कि जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा धातु में बने हुए अनंत वासुदेव, और अनंत वासुदेव का पास है जो भोग लगता है वही भोग फिर लिंगराज के पास लगता है। लिंगराज का पास लगने के बाद हमें वैष्णव होने का नाते हमें शिवजी का महाप्रसाद नहीं लेते हैं लेकिन लिंगराज मंदिर पे हमें महाप्रसाद खा सकते हैं क्योंकि वो लिंगराज का मंदिर का जो प्रसाद होता है ये महा महाप्रसाद हो गया, एक वैष्णव का प्रसाद हो गया क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद को वहाँ पे लगेगा फिर हम लोग ग्रहण करते हैं और कर सकते हैं। इसका बाद है अनंत वासुदेव को दर्शन करने का बाद उसका सामने है बिंदु सरोवर, वो वहाँ का पानी को छिटका लगाना है, और उसका बाद है भुवनेश्वर इस्कन जो कि सारा विश्व का श्रील प्रभुपाद का लास्ट कृपा डाल कर गए। सारा विश्व में श्रील प्रभुपाद ने कितना मंदिर बनाया था, कितना 108 108 मंदिर, पहला मंदिर है न्यूयॉर्क और लास्ट मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर, और वो मंदिर पे जरूर जाना है। प्रभुपाद का संपूर्ण कृपा वहाँ छोड़ दिया, कहने का है बाप का जैसे दो चार बच्चे होते हैं बच्चे होने का नाते सबसे छोटा का प्रति छोटे बच्चे का प्रति कितना प्रेम रहता है, उसी प्रकार सारा कृपा वहीं डाले है। और आप उड़ीसा जाते हो तो भुवनेश्वर जाना, और भुवनेश्वर जाके मंदिर इस्कन मंदिर जाते हो, इस्कन मंदिर पे जगन्नाथ को दर्शन करना और पुरी का जगन्नाथ का दर्शन करने में अभेरना है। ये जो जगन्नाथ है स्वयं आए हैं, इसका बारे में दो मिनट आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार वो जगन्नाथ आए। श्रील प्रभुपाद गौर गोविंद स्वामी महाराज को जो कि भुवनेश्वर मंदिर बनाया, गौर गोविंद स्वामी महाराज को कहे ये मंदिर आप बना रहे हैं तीन अल्टर आप बनाया है लेकिन तीन अल्टर में क्या क्या रखेंगे, न एक ही अल्टर में गौर निताय और बीच में कृष्ण बलराम और लास्ट में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तब दोनों के लिए विग्रह बना दिए, गौर निताय बना दिया और कृष्ण बलराम बना दिए, बोले जगन्नाथ अभी नहीं बनाने का, जगन्नाथ स्वयं आएंगे और स्वयं भी आए। इसलिए प्रभुपाद का बात को सुनते हुए एक अल्टर खाली रखा, तब गौरगंज महाराज आश्चर्य हो गए, बोले कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, ऐसा ऐसा सोचते सोचते थोड़ा विरोध किया गया, तो प्रभुपाद को भी चिंतन कर रहे हैं प्रभुपाद का बात क्या गलत हो जाएगा निश्चिंत सत्य होगा। तब क्या हुआ तो वह भुवनेश्वर और पुरी का बीच में एक व्यक्ति जगन्नाथ को रख के सेवा करता था, तब वो व्यक्ति इतना सेवा करने के बाद भी रात को वो व्यक्ति को भगवान स्वयं जगन्नाथ स्वप्न में बोले देखो आपका सेवा में मैं संतुष्टि हूँ लेकिन मैं और भुवनेश्वर में एक ही साधु है उनका हाथ में थोड़ा सेवा लेना चाहता हूँ। तब वो रात को स्वप्न देख के सुबह उठते थे वो गदगद हो जाते हैं रोने लगते हैं रो के, तब क्या करेंगे भगवान सब कुछ बता ही दिए थे बोले वो जगह पे वो साधु है, वो भजन कर रहे हैं, उधर जाके ये जगन्नाथ को आप उनका समर्पित कर देना का। तब वो जगन्नाथ को फिर उन्होंने सुबह उठते हुए ढूंढते ढूंढते आके भुवनेश्वर में पहुंच जाते हैं, और गौरकुंज स्वामी महाराज कहाँ पर है पूछते पूछते इस्कन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जाके साधु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके इमिडिएटली जो न्यूज मिला है, जगन्नाथ ने जो न्यूज दिया है वो न्यूज सब बता दिया है, और गौरकुंज स्वामी महाराज के अंदर कहता ना आनंद आ जाता है। तो आनंद आने के बाद इमिडिएटली प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, प्रेसिडेंट को बुला के इमिडिएटली तब कीर्तन करते करते गए और जगन्नाथ को स्वयं लेके आके जगन्नाथ को उसी अल्टर में विराजमान कर दिए। तब ये जगन्नाथ का भुवनेश्वर का, और भुवनेश्वर का और दूसरा और एक ही कहानी है, जो कि लोकनाथ स्वामी महाराज जो कि लास्ट में प्रभुपाद का निर्देश था, जो कि उनको क्या सेवा दिए थे, पदयात्रा, पदयात्रा करने के लिए, और पदयात्रा का पहले पदयात्रा का जो गौर निताई है वो गौर निताई भुवनेश्वर पे है। वो गौर निताई क्या है, तब पदयात्रा शतवार्षिक उत्सव था, तब गए थे, तब होने का नाते वहाँ पे क्या हुआ, एक ही बैल मर गया। एक ही बैल मरने का नाते बैल को ढूंढते रहे, बैल तो लाएंगे तो फिर पदयात्रा चलेगा, नहीं तो फिर बैल ढूंढते ढूंढते कितना दिन लग गया। लेकिन गौर निताई को गौरकुंज स्वामी महाराज के हाथ में दिए सेवा करने के लिए, और गौर निताई को ऐसा सेवा करने के बाद गौर निताई इतना मनमुग्ध हो गया और वहाँ से हिले नहीं। तब लोकनाथ स्वामी महाराज जब बैल लेकर आए तब बोले हमारा गौर निताई दीजिए, हम पदयात्रा शुरू करेंगे। बोले आप लेना चाहते, गौरकुंज स्वामी महाराज कहे आप लेना चाहते हो ले लो, वो नहीं जाना चाहते मैं क्या करूँ। तब और लोकनाथ स्वामी महाराज कहे बोले ठीक है आप ये गौर नित्य का सेवा करते रहिए। तब पहली बार जो गौर निताई को स्थापित किया गया था वो गौर निताई अभी भी कहाँ पे है, भुवनेश्वर पे है। तब इस्कन मंदिर दर्शन करने के बाद आप भुवनेश्वर से पुरी का पुरी को प्रस्थान करते हो, बीच में आएगा साखी गोपाल, जरूर दर्शन करना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी बहुत परेशानी होता है वहाँ पे, हम लोग भी नहीं जाते हैं, हम भी परेशानी हो जाते हैं, पंडे लोग इतना क्या बोला जाए, वहाँ तो थोड़ा कठिनाई है। लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हो तब फिर ठीक है, नहीं तो और कुछ भी आवाज दिया फिर बहुत सारा, फिर भी आप लोग नॉर्मल होके जाके भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जो भगवान स्वयं साखी देने के लिए गए थे वृंदावन से चल के, बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान तो पत्थर है, पत्थर क्या चलता है, ये उनको एग्जाम्पल देना है। भगवान स्वयं भी बात करते हैं, साखी देने के लिए वृंदावन टू चल गए, जगन्नाथ पुरी पहुंच गए, ये साखी गोपाल है। और वो साखी गोपाल को दर्शन करने का बाद है फिर आप पुरी में जगन्नाथ मंदिर दर्शन हुआ, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का बाद है गुंडीचा मंदिर जाना, जो इंद्रदुम्न राजा का नाम का, इंद्रदुम्न राजा का पत्नी का नाम था, क्या था, गुंडीचा, पत्नी का नाम से एक मंदिर बना गया। वो मंदिर पे भगवान स्वयं आते हैं, रथ यात्रा का टाइम पे 7 रात्रि विश्राम करते हैं, 7 रात्रि दर्शन देते हैं। लेकिन वो यात्रा का नाम है रथ यात्रा, उसका नाम है नवरात्रि यात्रा, और नाम है घोष यात्रा, इस प्रकार भी कहा जाता है। तब वो गुंडीचा मंदिर को दर्शन करने का, गुंडीचा मंदिर का बाद आप लोग जाना चाहिए गंभीरा, जहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु 18 साल भजन किया, एक दिन दो दिन नहीं, और वो कमरा बहुत छोटा है, कैसे थे चैतन्य महाप्रभु आप कल्पना नहीं कर सकते। और वह गंभीरा का अंदर एक दिया जलता है, तब से चैतन्य महाप्रभु जब से थे तब से वह जल रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि लिपता नहीं, हर दिन हमको घी डालना होता है बस। और वहाँ पे गंभीरा का अंदर क्या दर्शन होगा, चैतन्य महाप्रभु का खड़म और चैतन्य महाप्रभु का कमंडलू, ये दर्शन करने का गंभीरा का अंदर। और इसका बाद आप जाना गंभीरा का पास है 1 मिनट का रास्ता है सिद्ध बकुल, जहाँ पे हरिदास ठाकुर बैठ के क्या किए, क्या किए, पैसा गिने, माला किए, भगवान का नाम जपे, कितना नाम, एक ही माला करने के लिए हम परेशानी हो जाते हैं, और कितना नाम किए, 3 लाख नाम जप किए। और ये जो पेड़ था बकल का पेड़ था, इसलिए उसका नाम दिया गया सिद्ध बकल, ये बकल पेड़ भी सिद्ध हो गया भगवान का नाम सुनते सुनते। और पेड़ का क्यों वहां पे और वो पेड़ को कौन लगाया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु लगाए भक्त के लिए। जब हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे तब उस टाइम पे बहुत धूप पड़ रहा था, धूप पड़ने के नाते तब चैतन्य महाप्रभु भक्त वश्चलता है, भक्त का व्याकुल होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु हर दिन हरिदास को दर्शन करने के लिए जाते थे। पहले जाएंगे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के बाद ये डेली डेली का चैतन्य महाप्रभु का ये काम था। डेली जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करेंगे, मंदिर के अंदर बेढ़ा में परिक्रमा करेंगे, करने के बाद फिर जाएंगे हरिदास के पास। कितने भक्त व्याकुलता है, हरिदास के पास जाकर पूछताछ करेंगे, ठीक ठाक है ना आपका भजन साधन, सब ठीक ठाक चल रहा है? भगवान स्वयं पूछते हैं भक्तों को। और हरिदास ठाकुर के लिए इतना व्याकुल थे, वो पेड़ स्वयं भगवान लगाए चैतन्य महाप्रभु। ये घटना कैसा है, हर दिन जगन्नाथ दांतुन करते हैं, तीन दांतुन जगन्नाथ को लगता है। हम लोग को आचमन का माध्यम से और मंत्र का माध्यम से हम लोग दांतुन कराते हैं, लेकिन जगन्नाथ पुरी में हर दिन लकड़ी के दांतुन। गांव का लोग होंगे तो आप लोग को समझ पाएंगे दांतुन क्या होता है। अभी तो संसार में सब ब्रश हो गया, लेकिन दांतुन में, और दांतुन सब में आप दांत साफ करते हैं ऑटोमेटिक अच्छा से साफ होता है और सब, और वो दांतुन तीन दांतुन जगन्नाथ को लगता है सुबह। लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु का इच्छा हुआ, ये दांतुन भगवान दांत को दांतुन करने के बाद है उसको महाप्रसाद करके वो लोग पंडे लोग क्या करते हैं, सबको दे देते हैं। तब देने का नाते एक दिन चैतन्य महाप्रभु का मन में इच्छा हुई, बोले मेरा को एक दिन तो महाप्रसाद मिल जाना चाहिए। तब इच्छा होने का नाते तब एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वहां पे जो दांतुन लगता है वो कुंभाटुआ दांतुन लगता है, उड़िया भाषा में बोलते हैं कुंभाटुआ, एक ही पेड़ है तो है कुंभाटुआ, वो पेड़ का दांतुन लगता है। लेकिन एक दिन पंडे सुबह उठ के भगवान का दरवाजा खोला, तीन दांतुन होना चाहिए, दो दांतुन है एक ही दांतुन नहीं है, क्या करेगा? और सुबह का टाइम पे दरवाजा खोलना है, भगवान का आरती करना है, पहले तो दांतुन करेगा, पहले आरती होगा। तब उन्होंने मंदिर का पास एक ही पेड़ था, बकल का पेड़, और वो बकल का पेड़ से इमीडिएटली तोड़ के ला के और भगवान का सेवा कर दिया। करने के बाद उसी दिन चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने वही दांतुन दे दिया जो कि बकल का दांतुन था, और वो बकल का दांतुन चैतन्य महाप्रभु पहले सिर में लगाए, क्योंकि जगन्नाथ का दांतुन है ना, सिर में लगा के वही दांतुन को लेके हरिदास जहां बैठ के भजन कर रहा था वहां पे वो दांतुन को बोए, जमीन पे लगाते समय इमीडिएटली दांतुन पेड़ बन गया। अभी भी वो पेड़ है, वो पेड़ का जड़ कहाँ है, उसका शाखा प्रशाखा कहाँ है आपको पता नहीं चलेगा, और पेड़ भी हर दिन भगवान का नाम सुनता है, और वहां पे 24 घंटा कीर्तन चलता है। सीधा वकल वहां पे जाके प्रणाम करना, वहां पे कोई भी ढाका, कोई भी आप ढागा लेकर जाते हो मन कामना करके, वहां पे जरूर आप ढागा लगाना चाहिए। हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा चले, हो सकता है और कुछ के लिए, लेकिन ये सारा चीज के लिए कभी ढागा नहीं लगाना चाहिए। ढागा लगाना चाहिए क्या के लिए, प्रभु का नाम और ज्यादा करके।